तो आप सब लोगों ने देखा सत्वगुणी व्यक्ति कैसा होता है, रजोगुणी व्यक्ति के कार्य क्या होते हैं और तमोगुणी व्यक्ति के कार्य क्या होते हैं। इस संसार में इस तीनों गुणों के द्वारा सब लोग कार्य करते हैं। जो तमोगुण में है वे बहुत ही लेट उठते हैं, उनका खाना पीना सब कुछ तमोगुणी होता है, और दूसरे को दान देने की वजह दूसरे से लेने की भावना होती है। जो रजोगुणी होते हैं वे लोभी होते हैं, वे इतना दान नहीं करते हैं और आलसी होते हैं और शांति रखे। और सत्वगुणी व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी उठकर ठीक से नहाते हैं और खाना खाते हैं, टाइम से ऑफिस पहुंच जाते हैं, कुछ दान भी किया करते हैं और फिर वापस घर पर आकर सो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन गुणों से तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। परंतु आप लोगों ने देखा तमोगुण से श्रेष्ठ है रजोगुणी व्यक्ति और रजोगुण से श्रेष्ठ व्यक्ति है सत्वगुणी व्यक्ति। परंतु भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं अर्जुन हमें सत्वगुणी भी नहीं बनना है। कहते हैं त्रिगुणिया विषया वेदा निशस्त्र गुणियो भवार्जुन निर्दंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन तीनों गुणों से हमें ऊपर उठना चाहिए, न तो हमें सत्वगुण में रहना है, न तो तमोगुण में रहना है, न तो रजोगुण में। हमें शुद्ध सत्व में स्थित होना चाहिए और शुद्ध सत्व में स्थित होने के लिए भक्तों का संग करना होगा। जैसे आप इस सत्संग में हो, भक्तों के संग में हो, भक्तों के संग में बैठकर हम स्वाभाविक शुद्ध सत्व में स्थित हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं बैठे होते तो कल्पना कीजिए, या तो टीवी के सामने बैठे होते, या तो किसी गार्डन में बैठे होते, या फिल्म देखने गए होते, रजो और तमो गुण में होते। परंतु भक्तों के बीच में बैठने से, भक्ति करने से शुद्ध सत्व गुण में हम स्थित हो सकते हैं। इसलिए भगवद गीता के अनुसार, भगवान के अनुसार, अगर शुद्ध सत्व में स्थित होना है, तीनों गुणों से ऊपर उठना है, तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। इस प्रकार से यह प्रकृति भगवान की शक्ति है, और खास करके भौतिक प्रकृति को प्रकृति कहा जाता है, और इस प्रकृति के तीन गुण हैं और उस तीन गुण के अनुसार इस संसार के लोग कार्य करते हैं। तो यह है प्रकृति के बारे में संक्षिप्त में वर्णन। अब हम काल के बारे में जानेंगे। शुरू रखिए लेकिन थोड़ा यहाँ घुमा दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। काल के बारे में हम जानेंगे। समय तो सब लोग जानते हैं, घड़ी में देखना सब लोग जानते हैं। सबसे कम समय किसे कहा जाता है? सेकंड को। और एक सेकंड जब 60 बार घूम जाती है, जब 60 सेकंड होती है तब एक मिनट होती है। एक मिनट जब 60 मिनट हो जाती है, 60 बार जब वो घूम जाती है तब एक घंटा होता है। ऐसे 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। इस प्रकार 24 घंटे का एक दिन होता है। ऐसे 30 दिन जब बीत जाते हैं तब एक महीना होता है। ऐसे 12 महीने जब बीत जाते हैं तब एक साल होता है। तो ऐसे एक साल जब 4,32,000 वर्ष जब बीत जाते हैं तब एक कलयुग बीतता है। यह कलयुग चल रहा है आप सब लोग जानते हो। तो 4,32,000 वर्ष जब बीतता है तब एक कलयुग बीतता है। यह कलयुग 4,32,000 वर्ष का है और इस कलयुग से दुगुना है द्वापर युग, जिसकी अवधि है 8,64,000। और द्वापर युग इस कलयुग से तीन गुना है त्रेता युग, जिसकी अवधि है 12,96,000। और कलयुग से चार गुना अवधि है सतयुग की, जिनकी उम्र है 17,28,000 वर्ष। इस प्रकार कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, ये चार युग जब मिलते हैं तब एक चतुर्युग कहा जाता है। और ये चारों युगों में जितने वर्ष हैं, ये सब वर्ष को अगर जोड़ा जाए तो एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का होता है। ऐसे 43,20,000 वर्ष जब हजारों बार बीतते हैं, चतुर्युग जब 1,000 बार बीतते हैं, तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। सोचिए आप, अपनी कल्पना लगाते जाइए। जब सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली, ये चार युग 1,000 बार बीतते हैं, अर्थात चतुर्युग चार युग 43,20,000 वर्ष के होते हैं, 43,20,000 वर्ष जब 1,000 बार होते हैं तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। और उतने ही 12 घंटे की ब्रह्मा जी की रात है। तो 43,20,000 वर्ष इंटू 2,000 करेंगे तब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। तो 43,20,000 वर्ष को हम 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 8,64,00,000,000 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है? 8,64,00,000,000 हमारे वर्ष जब बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। ऐसे ब्रह्मा जी के जीवन में 365 दिन का एक साल होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। अब मैं जब यह कर रहा था तब कैलकुलेटर में यह नहीं आ रहा था, तब मैं कंप्यूटर पर बैठा, उसमें भी यह फिगर नहीं आया। तब जाकर आप ही कल्पना कर लीजिए कि 8,64,00,000,000 वर्ष का एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। तो ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। और ब्रह्मा जी के जब 100 साल बीत जाते हैं तब भगवान श्री विष्णु एक सांस लेते हैं। उस वक्त जब भगवान विष्णु एक सांस लेते हैं तो यह ब्रह्मा, यह सृष्टि, यह चराचर जगत सब भगवान में चला जाता है। और जब भगवान सांस छोड़ते हैं तो फिर से ब्रह्मा जन्म लेते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती। अब कल्पना कीजिए, भगवान के सामने, ब्रह्मा जी के सामने, यह देवताओं के सामने हमारी अवधि, हमारी उम्र कितनी है? कुछ नहीं है। कुछ लोगों का इस पर विश्वास नहीं होता है, परंतु दृष्टांत में आपको दे रहा हूं। इस संसार में कुछ जीव, कुछ कीड़े ऐसे हैं, छोटे छोटे जो कीट होते हैं, वे सुबह जन्म लेते हैं, दोपहर को विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और शाम को मर जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाए कि इस पृथ्वी पर ऐसे मनुष्य रहते हैं, हमारी उम्र जो है, हमारी उम्र का एक दिन होता है ये मनुष्यों का, तो कीट लोग सोचेंगे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। परंतु वास्तव में ऐसा है। उनका जब एक जीवन बीतता है तब हमारा एक दिन बीतता है, ठीक उसी प्रकार यह गणना है। तो इस प्रकार से भगवान जब एक सांस लेते हैं तो कितने कितने वर्ष, कितने कितने कल्प और कितने कितने लोग आकर चले जाते हैं केवल एक सांस में। अब कल्पना कीजिए भगवान कितने बड़े होंगे, ब्रह्मा जी की उम्र, ब्रह्मा जी कितने बड़े हो गए, और हम साधारण जीव कीड़े की इसमें कहाँ गिनती। फिर भी हम अपने आप को धन्य मानते हैं और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हमारा जो ये काल है, ये समय है, हम व्यर्थ बिता रहे हैं। लोग समय को बिल्कुल व्यर्थ बिता रहे हैं। ये समय बहुत कीमती है। करोड़ों रुपया देने के बाद भी समय वापस नहीं आने वाला है। करोड़ों रुपया देने के बाद भी एक सेकंड को आप नहीं खरीद सकते हो। एक बार समय गया तो गया, वे वापस नहीं आता है। इसलिए हमें चाहिए कि ये गलत कामों में हम न प्रवृत्त होकर हम अच्छे कार्य करें। हमारे जीना है केवल 100 साल। उस 100 साल के लिए ये बंगला होना चाहिए, ये गाड़ी, ये वो, ये साड़ी, ये गहना, ये सब कुछ होना चाहिए। हम बहुत अरेंजमेंट करने में लगते हैं, परंतु यह न करते हुए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। एक एक संत की बात मुझे याद आ रही है, एक संत की कथा है, लोमस ऋषि हो गए हमारे इतिहास में जो आज भी है। उस उनका नाम लोमस इसलिए हुआ ताकि उनके शरीर में कई सारे रोंगटे थे, हमारे शरीर में जैसे होते हैं परंतु उनके शरीर में कई सारे रोंगटे थे, इसलिए उसे लोमस ऋषि कहा जाता था। उस वो लोमस ऋषि अपने लिए एक कुटिया तक नहीं बनाए थे, वे एक चटाई रखते थे, जब धूप आती थी तब अपने सिर पर चटाई ऐसे कर लेते थे और शाम को वे चटाई नीचे रखकर उस पर सो जाते थे। तो एक बार देवराज इंद्र चलते चलते इस लोमस ऋषि के पास आया। लोमस ऋषि को पूछा कि तुम्हारे लिए रहने के लिए घर क्यों नहीं बनाए हो? तब वह लोमस ऋषि ने कहा कि जीना है कुछ साल के लिए, अब हमारा जीवन कितना है, इस कम जीवन के लिए हम क्या घर बनाएंगे, उसे तो अच्छा है केवल भगवान की भक्ति करें। तब इंद्र ने पूछा कि हे ऋषि आपकी उम्र कितनी है यह तो बताओ। तब इस लोमस ऋषि ने कहा कि मेरे जितने रोंगटे हैं जब एक ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, जैसे मैंने आपको गिनाया ब्रह्मा जी के जब 100 साल हो जाते हैं तब मेरा एक रोंगटा टूटता है, ऐसे ब्रह्मा जी के जब दूसरे ब्रह्मा जी आते हैं और जब उसके 100 साल बीत जाते वे मर जाते हैं तब मेरे शरीर का दूसरा रोंगटा टूटता है, वैसे जब मेरे शरीर के सारे रोंगटे टूट जाएंगे तब मेरी मृत्यु होगी। ऐसे लोमस ऋषि, इतनी उम्र प्राप्त करने वाले लोमस ऋषि कर रहे हैं कि जीना है बहुत कम, तो उस कम अवधि में हम क्यों ये सब फजीहत में पड़े। तो उस लोमस ऋषि के सामने हमारी अवधि कितनी है जीवन की, 100 साल भी यह मनुष्य नहीं जी सकता है, केवल 60-70 साल में। तो प्रहलाद महाराज बहुत ही सुंदर गणना करते हैं, ये मनुष्य जीवन मिला है तो इस मनुष्य जीवन, दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके भगवान का भजन करना चाहिए और इस भजन करने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 100 साल के लिए यह जीवन मिला है, 100 साल भी कौन जीता है, 60-70 साल में लोग मर जाते हैं, परंतु 100 साल पकड़ लीजिए कि जीवन की अवधि 100 साल की है। उस जीवन की अवधि में हम 12 घंटे तो सोने में बिता देते हैं और 12 घंटे काम करते हैं, तो अगर गिना जाए तो जीवन का 50 साल तो हम सोने में बिता देते हैं, बचे केवल 50 साल, और 15 साल तक तो हम बिल्कुल बच्चे खेलने कूदने में हम बिता देते हैं, इसलिए उस 50 साल से 15 साल निकाल देते तो बच्चे केवल 35 साल, और उस 35 साल में हमारे जीवन के जो अंतिम समय है जब हम बूढ़े हो जाएंगे, उस बूढ़े होने के समय में 10 साल में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बचेंगे केवल 15 साल। उस 15 साल में हम सोचते हैं कि हम ये धन लाएंगे, ये करेंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, विवाह करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, अब कहां से भजन कर पाओगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए यह काल के ऊपर ध्यान दे, समय जा रहा है, जैसे गंगा की धारा अजस अविरत गति से बहती रहती है वैसे ये समय बह रहा है, इसे कोई रोक नहीं सकता है, और भागवत में समय यह काल की उपमा एक सांप के साथ दी गई है। जैसे चूहा मस्त रहता है बिल खोदने में, आप देखते हो खेत में अगर किसी ने काम किया है तो पता होगा, चूहा जब अपना घर बनाता है तो खेत के एक कोने से घर बनाना शुरू करता है तो बिल्कुल ऐसी सुरंग बनाता है खेत के दूसरे कोने से बाहर निकलता है, और उसमें यहां से 3-4 उस घर के दरवाजे बनाता है और उस बना घर बनाने में ही पूरा जीवन बिताता है। तो चूहा मस्त रहता है अपना घर बनाने में, बिल खोदने में, और उस वक्त सांप सतर्क रहता है, सांप अपने लिए कभी घर नहीं बनाता है, सांप चूहे को खा जाकर उस चूहे के घर में रहता है, तो चूहा तो मस्त रहता है घर बनाने में और सांप बिल्कुल उस घर के दरवाजे पर बिल्कुल बिल के बाहर मरे के समान पड़ा रहता है, और चूहा बिल्कुल प्लान मारते रहता है, एक फ्लैट बोरीवली में चाहिए, एक मीरा रोड में, एक पार्ला में चाहिए, और ये खरीदना है, टीवी लाना है, वो लाना है, ये करते 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 जब बिल के बाहर आता है तो वह काल रूपी जो सर्प होता है बिल्कुल गप करके उसे पकड़ लेता है। ऐसा ही होता है हमारे जीवन में, ये करेंगे वो करेंगे तब तो धरती कंप हो गया, ये प्लान वो प्लान, हम ये घर पर लाएंगे मोबाइल लाएंगे, तब तक ट्रेन में बम फूट गया। बिल्कुल काल बेटा है हमारी अवधि को काटने के लिए, मारने के लिए। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा इस काल को बिगाड़े बिना, समय को व्यर्थ किए बिना हमें भगवान के भजन में लगना चाहिए। एक बार मैं ट्रेन से आ रहा था, कुछ लोग ताश खेल रहे थे, तो मैंने कहा क्यों जुआ खेल रहे हो? तब उन्होंने कहा हम जुआ नहीं खेल रहे हैं, इस पर हमारा पैसे नहीं लगे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं। ये मूर्ख यह नहीं जान रहे हैं कि वे टाइम पास नहीं कर रहे हैं, टाइम उसे पास कर रहा है। और एक दिन ऐसा आता है उनके जीवन में जब अंतिम समय आता है, हार्ट अटैक आ जाता है, और जीवन का जब अंतिम समय रहता है तब डॉक्टर डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि मैं तुम्हें लाख रुपया दूंगा, करोड़ रुपया दूंगा, लेकिन हमारे पिताजी के केवल 2-3 घंटे जीवन के बढ़ा दीजिए। अंतिम समय में 2-3 घंटे बढ़ाने के लिए, करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु मूर्ख यह नहीं सोचता है कि जब यह शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, तब कुछ भगवान का नाम ले ले। बिल्कुल इस काल को, इस समय को न देखते हुए व्यक्ति चलते हैं। भगवान कहते हैं इस काल को देखना चाहिए, और काल की गति बहुत न्यारी है। काल कब किस पर आ जाता है ये कोई भरोसा नहीं है, इसलिए काल को हमें समझना होगा। गीता में अर्जुन ने भी यह प्रश्न पूछा, जब अर्जुन ने कृष्ण को कहा कृष्ण आपके विराट रूप को मुझे दिखाओ, आपका काल समान विकराल रूप मुझे देखना है, परीक्षा ले रहे थे, तब भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम अपनी इस दृष्टि से मेरे विराट रूप को नहीं देख सकते हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, और दिव्य दृष्टि जब प्रदान की तब अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखा, उस काल के समान रूप को देखा। और जब अर्जुन ने उस रूप को देखा तो बिल्कुल अर्जुन कांपने लगा। गीता में अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन कहना प्रारंभ करते हैं, अर्जुन ने जब भगवान के उस विराट रूप को देखा तो अर्जुन का अनुभव क्या हुआ, अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने देखा और भगवान से कहने लगे, हे भगवान पश्यामि देवां सव देव देह सर्वां सता भूत विशेष संगान, हे देव मैं आपके शरीर में सभी देव तथा अनेक भूतों को देख रहा हूं। अर्जुन ने भगवान के शरीर में सभी देव और सभी भूतों को देखा। ब्राह्मण मिशम कमला सनंस्त मृषिम च सर्वानुरंगाश दिव्यान, और अर्जुन ने कमल पर विराजित ब्रह्मा को, भगवान के उस शरीर में ब्रह्मा जी को, शिव जी को और समस्त ऋषि का दर्शन अर्जुन ने भगवान के उस विकराल उस विराट स्वरूप में किया। इतना ही नहीं, अनेक बाहु धरोवस्त नेत्रम संपूर्ण विश्व के स्वामी पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, उस संपूर्ण विश्व के स्वामी के अनंत रूप को अर्जुन ने उस विराट स्वरूप में देखा। और नान्तम न मध्यम न पूर्णस्त वादिम पश्याम विश्वेश्वर विश्व रूपम, अर्जुन ने ऐसा विश्व रूप देखा, अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कृष्ण ऐसा अद्भुत रूप मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। किरीटिनम गदितम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम, बहुत ही सुंदर मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त और सभी ओर से प्रकाशमान भगवान के उस रूप का दर्शन अर्जुन ने किया। और अर्जुन ने कहा पश्यामि त्वाम दूने रेशम समन्ता दीप्तान लार्कम दुतिम प्रमेयम, अर्जुन ने भगवान का ऐसा रूप का दर्शन किया जिसमें सूर्य चंद्र देवता ये सब कुछ उपस्थित थे। अर्जुन कहने लगे हे कृष्ण आपकी आंखों में मुझे सूर्य और चंद्र दिख रहे हैं। त्वमक शरण परम वेदी तव्यम, अर्जुन कहते हैं आप ही जानने योग्य पर ब्रह्म परम परमात्मा हो, और त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम आप ही जगत के आश्रय हो। अर्जुन कहते हैं त्वम वेय शश्वतम धर्म गोप्ता सनातनम स्तव पुरुष मतो में, हे कृष्ण हे आदि ईश्वर तुम सभी धर्मों के अनादि हो, सभी धर्मों के रक्षक हो, आप ही सनातन अविनाशी और परम पुरुष हो। अर्जुन कहते हैं अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुम राशि सूर्य नेत्रम, हे परमेश्वर आपके आदि मध्य अंत मुझे और छोर नहीं दिख रहा है, आपका ऐसा रूप है बिल्कुल अनंत रूप, कहां से शुरू कहां से अंत मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। दावा पृथ्वी रिदम मनंतरम ही व्याप्तम त्वेके न दिशच सर्वा, हे कृष्ण मुझे सभी दिशा में सभी लोकों में समस्त लोकों में आपका दर्शन हो रहा है। दृष्टात भूतम रूपम मुग्रत वेदम लोकोत्तरयम प्रवथितम महात्मन, हे महापुरुष आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। हे गोविंद हे देवताओं के समूह आप में सभी देवतागण आप में प्रवेश कर रहे हैं। अभी हित्वाम सूर संगा विशंति कचित भीता प्राज लयो गृणंती, और समस्त देवतागण आपके रूप को देखकर आपके सामने हाथ जोड़कर आपके नाम का कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा स्वस्तिति युक्ता महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वां स्तुति भी पुष्प लाभी, और महर्षि सिद्ध और सभी ऋषि मुनि उत्तम उत्तम श्लोक से आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्यावसवो एच साध्या विश्व विनो मनंत श्रोम पाश्य गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संगा विश्यन्ति ताम विस्मितिश सर्वे, हे परमेश्वर मैं आप में 11 रुद्र 12 आदित्य 8 वसु साध्यगण विश्वदेव अश्विनी कुमार मरुद्गण पितर गंधर्व यक्ष राक्षस समस्त सिद्धों के आपके अंदर में आज दर्शन कर रहा हूँ, और ये सब लोग आपके रूप को देखकर विस्मित हो रहे हैं, सब लोग आपके रूप को देखकर डर रहे हैं। रूपम महते बहुवक्त नेत्रम महाबाहो बहुबाहो रूपादम, हे महाबाहो आपके बहुत मुख नेत्र हाथ जंगा और पैर और उदर को देखकर बहु धर्म बहु दृष्टा करालम दशवा लोका प्रव्यथिताम सहांतम, बहुत सी दाढ़ों के कारण आपकी दाढ़े इतनी विकराल है, आपके दंत आपके दांत इतने विकराल है कि आपके रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, और ये सब लोगों के साथ हे कृष्ण मैं भी डर रहा हूँ, मैं भी भयभीत हो रहा हूँ, मैं भी कांप रहा हूँ और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभस वृषम दीप्त अनेक वर्ण, हे विष्णु आपको आकाश का स्पर्श करते देखते हुए व्याप्त तनानम दीप्त विशाल नेत्रम मुख फैलाए बड़ी बड़ी आंखों निकाले हुए देखकर दृष्टा हित्वाम प्रव्यथितांतरात्मा, भय से मेरा मन विचलित हो रहा है और ध्रुति न विदामी शमम न विष्णु, और हे कृष्ण मैं आपके इस विराट स्वरूप को देखकर मैं मेरा समस्त धैर्य खो रहा हूँ, मैं समस्त धीरता खो चुका हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है आपके इस रूप को देखकर। दृष्टा करालानी चमेत मुखानी दृष्टे व कालान लसन निभाती, हे कृष्ण अर्जुन डरते हुए कृष्ण को कह रहे हैं, हे जगन्निवास मैं आपके प्रलय काल की अग्नि के समान इस मुख को देखकर दिशो न जाने न लभे न शर्म प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास, आपके इस उग्र रूप को देखकर मैं यह भी नहीं जान रहा हूँ कि मैं किस दिशा में खड़ा हूँ, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मैं क्या हूँ कौन हूँ, मैं खुद मुझे भूल रहा हूँ आपके इस रूप को देखकर। अमीच काम दुष्ट राक्षस पुत्रा सर्वे सोवेवाह निपाल सर्गे, और जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के साथ जितने भी महापाल महायोद्धा आए हैं ये सब भीष्म द्रोण पुत्र पुत्र सतासो सहस्म दीपे रवि योद्धमो के, हे कृष्ण ये समस्त लोगों को दुर्योधन के साथ आए हुए सभी राजा महाराजा पितामह भीष्म द्रोण और द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ये सबको मैं आपके मुख में जाते हुए देख रहा हूँ। वक्त्राणि ते त्वर मणा विशंति दृष्टा करालानि भयानि कानि, हे कृष्ण उनमें से कुछ लोग तो आपके शिरों के अंदर आपके मुख के अंदर ऐसे ऐसे जल रहे हैं जैसे कोई लकड़ा अग्नि में जाकर जल रहा हो, और कुछ लोग आपके दांत में ऐसे फंस कर रहे हैं जैसे कुछ खाने के बाद दांत में फंस जाते हैं, वैसे बड़े बड़े योद्धा वीर बड़े बड़े वीर महायोद्धा आपके दांत में ऐसे फंसे हैं जैसे खाने के बाद कुछ वस्तुएं फंस जाती हैं। यथा नदी नाम बहुम वेगा समुद्र मेवा विमुखा द्रवंती, हे कृष्ण ये सब लोग आपके मुख में ऐसे जा रहे हैं जैसे बड़ी बड़ी नदी समुद्र में लुप्त हो जाती हैं, वैसे इस कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े रहने वाले सब लोग आपके मुख में जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं वैसे आपके मुख में जा रहे हैं। यथा प्रदीप्तम जलनम पतंगा विशंति नाशाय समुद्र वेगा, जैसे कोई पतंगा अपने अस्तित्व को नष्ट करने के लिए अपने आप को मारने के लिए अग्नि में प्रवेश करता है वैसे ही तथैव नाशाय विशंति लोका सतापि कारणि समुद्र वेगा, वैसे ही यह समस्त लोग मृत्यु के लिए आपके मुख में मरने के लिए जा रहे हैं। देली हसे जस मान समन्ता लोका समाग्र वदने झलक भी। हे विष्णु, आप अपने मुखों से सभी दिशा के लोगों को निगल रहे हो। तेजो धीरा पूर्य जगत समग्रम भास सोभोग्रा तपन्ति विष्णु। हे कृष्ण, हे कृष्ण, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को अपने तेज से इतना तपा रहा है, इस ब्रह्मांड में रहने वाले सब जीव तप रहे हैं। आख्या ही मैं भगवान उग्र रूपो नमोस्तु मे देव वर प्रसिद्ध विज्ञातु मिज्ञामि भवंत मातम नहीं प्रजनामि तव प्रवृतिम। हे देवेश, हे ईश्वर, हे कृष्ण, आख्या ही में कृपया करके आप मुझे बताओ कि यह भगवान, यह उग्र रूप, ये आप कौन हो, इस रूप में आप कौन हो, कृपया करके आप अपनी पहचान दो। जब अर्जुन ने इस प्रकार से भगवान को पूछा कि आप कौन हो, तो भगवान ने जैसे अपनी माँ देवहूति को कहा था, मद भयाति वाति वातो यम सूर्य स्तपति मद भयात दर्शत अग्नि वर्षत अग्नि मृत्यु शरति मद भयात। मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, मेरे भय से ये सूर्य चंद्र इत्यादि उगते हैं, और मेरे भय से ये मृत्यु संसार में सबको मार रही है। हे अर्जुन, उस रूप में भगवान ने कहा, कालोस्मि अहम कालोस्मि कालोस्मि लोकक्षय प्रवृत्तो लोकान समाह तुमिह प्रवृत्त रुते पितान न भविष्यन्ति शर्मे ये अवस्थिता प्रति केशु योद्धा। हे अर्जुन, तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूँ। हे अर्जुन, इस रूप में मैं काल हूँ, और मैं ही कृष्ण इस रूप में सबको निगलने के लिए इस संसार में जितने भी जीव है, इस संसार में जितने भी लोग हैं, ये सबको खाने के लिए, ये सबको मारने के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ। और तुम्हारे अलावा, भक्तों के अलावा जितने भी लोग हैं, ये सब लोग को मारकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इतना जो भगवान ने कह दिया, तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु, अर्जुन ने कहा प्रभु, अब मैं आप इस काल रूप को देखकर, इस विकराल रूप को देखकर मैं बहुत डर रहा हूं, कृपया करके आप इस रूप को छिपा लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना काल रूप, विराट स्वरूप दिखाया, जिसमें समस्त जीव भगवान के अंदर जा रहे थे, समस्त जीवों को भगवान मार रहे थे, खा रहे थे। तो भगवान कहते हैं कि अभक्तों के लिए, पापियों के लिए मैं काल हूं। जैसे दशम स्कंद में महाराज परीक्षित कहते हैं, विर्याणी तस्या अखिल देह भाजा मंत्र वही पुरुष काल रूपे। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान काल है, मृत्यु है साक्षात। परंतु जो लोग भगवान का भजन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान परम ईश्वर। जैसे कंस ने जब भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी को मथुरा में बुलाया, मथुरा में कृष्ण को मारने के लिए पूरा प्लान के साथ बुलाया, और कृष्ण ने जब बलदेव जी के साथ उस रंगशाला में प्रवेश किया, तब सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि उस रंग मंच में, रंग महल में जितने लोग बैठे थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान का दर्शन किया। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखिन तिन तैसी। और उसमें जो कंस था, कंस ने भगवान को साक्षात मृत्यु के रूप में, काल के रूप में दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण अभक्तों, पापियों के लिए काल है, और भक्तों के लिए परम प्रभु है। इसलिए जो लोग भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, उसे भगवान काल के रूप में आकर नष्ट कर देते हैं, खा जाते हैं। तो यह काल और कोई नहीं है, यह काल साक्षात भगवान है। और भगवान ने इस काल के बारे में भगवद गीता में कहा है कि हे अर्जुन, तस्मात सर्वेषु कालेषु, सभी काल में मेरा भजन करना चाहिए, मेरा मनन करना चाहिए। जब सब समय, सभी काल में मेरा भजन करोगे, मेरा मनन करोगे, तो अंत समय में तुम्हें मेरी याद आएगी। और अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। और अंत समय में अगर मेरी याद आ गई, अंत समय में मेरा स्मरण हो गया, तो वह समय इतना दिव्य होगा कि उस समय में तुम अधोगति को प्राप्त नहीं होगे, तुम मेरे परम धाम को प्राप्त होगे। तो इस प्रकार अंत समय में अगर हम भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत समय में अगर भगवान का स्मरण हो जाता है, तो भगवान की प्राप्ति होती है। ये गीता में भगवान इस प्रकार से कहते हैं। इसलिए इस काल के बारे में हम सबको जानना चाहिए, यह काल कभी भी रुकता नहीं है, यह काल बहुत भयावह है। और सबसे दुष्ट अगर काल है तो यह मृत्यु का काल, मृत्यु का समय। कोई मरना नहीं चाहता है, किसकी इच्छा है कि हम मर जाए, परंतु मृत्यु यह काल निश्चित रूप से आता है। किसी की इच्छा नहीं होती है कि हम मरे, परंतु ये आ जाती है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। और जबरदस्ती उस यमराज के दूतों के द्वारा इस आत्मा को इस शरीर से अलग किया जाता है। इसलिए यह काल मृत्यु काल आ जाए उसके पहले ही इससे बचने का उपाय कर लेना चाहिए। और इससे बचने का उपाय है भक्ति योग। हरे कृष्णा इस प्रकार से संक्षिप्त में हमने चर्चा की कि यह काल जो है स्वयं भगवान है, और यह भगवान सूर्य के द्वारा इस भौतिक जगत की अवधि को काट रहे हैं। तो प्रकृति के बारे में चर्चा की, काल के बारे में चर्चा की, अब हम संक्षिप्त में कर्म के बारे में चर्चा करेंगे। हमें कभी कभी बहुत प्रश्न होते हैं, जैसे कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं परंतु कुछ नहीं कमाते। एक हाथ गाड़ी चलाने वाला सुबह से लेकर शाम तक वह वजन ढोता रहता है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत पसीने बहाते रहता है, तो दिन के अंत में पूरे दिन का उसे केवल 100-200 रुपए मिलते हैं। परंतु एक व्यक्ति अपने ऐसी ऑफिस में बैठकर एक फोन कर देता है और शेयर ले लेता है, और एक घंटे के बाद वह 2 लाख रुपये कमा लेता है। एक व्यक्ति पूरा दिन मेहनत करके केवल 200 रुपए कमाता है, और एक व्यक्ति केवल एक ऑफिस में बैठकर एक फोन करके 2 लाख रुपया कमा लेता है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म एक फुटपाथ पे रहने वाले के घर पर होता है, और किसी का जन्म धीरूभाई अंबानी के घर पे होता है। कोई जन्म से रोडपति है तो कोई जन्म से करोड़पति। ये क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कि मेहनत से सब कुछ होता है, हार्ड वर्किंग पर विश्वास करना चाहिए, हम जितनी मेहनत करेंगे उतना हमें मिलेगा। पर आप देखिए, जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसने कहां मेहनत की है? जो फुटपाथ पे जन्म ले रहा है, फुटपाथ में रहने वाले किसी के घर में, उसने कोई मेहनत नहीं की, वे करोड़पति है। और धीरूभाई अंबानी के घर पे जिसने जन्म लिया, जन्म लेने से पहले ही वह करोड़पति है। अब जो लोग कहते हैं कि मेहनत करके पैसे कमाते हैं, अभी बालकों ने तो मेहनत कहां से की, अब बोलना भी नहीं सीखे हैं, मेहनत कहां से करेंगे, लेकिन फिर भी एक जन्म से रोड़पति और एक जन्म से करोड़पति। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है? यह सब कर्म के कारण होता है। कर्म के कारण इस संसार में हम सब भोगते हैं। तो आइए कर्म के बारे में हम चर्चा करें। कर्म का सीधा अर्थ होता है कार्य। कर्म को हमारी भाषा में कार्य कहा जाता है, और हम जो भी कार्य करते हैं उसका एक और रिएक्शन हमें मिलता है। जैसे वैज्ञानिक लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हर कार्य की एक उपयुक्त और प्रतिक्रिया होती है। मान लीजिए अगर एक घड़ी में ऊपर फेंकू, तो मैं उस घड़ी को ऊपर फेंकूंगा तो दूसरी क्रिया क्या होगी, वे ऊपर से नीचे आएगी। तो हम जब भी कार्य करते हैं तो उसकी एक प्रतिक्रिया अवश्य होती है। कर्म जो है हम करते हैं, उस कर्म की एक प्रतिक्रिया निश्चित रूप से होती है। तो हम अभी जो कार्य कर रहे हैं वह पिछले जन्म के किए हुए कार्य की उपयुक्त क्रिया चल रही है। पिछले जन्म में जो कार्य किए हैं उस कार्य की उपयुक्त प्रतिक्रिया यह चल रही है, ऐसा हम समझ सकते हैं। या हम अभी जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य की एक उपयुक्त प्रतिक्रिया अगले समय में होगी। ये दो चीज है। कर्म की गति बहुत न्यारी है, इसलिए भगवान गीता में कहे हैं कि गहना कर्मणो गति है अर्जुन, इस कर्म की गति को समझना बहुत मुश्किल, परंतु फिर भी बोधव्यम, फिर भी इस कर्म को, कर्म की गति को समझना चाहिए। हम अभी जो कार्य कर रहे हैं वे पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगत रहे हैं। अगर हम पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगत नहीं रहे हैं तो अभी जो कार्य कर रहे हैं उसका फल हमें अगले जन्म में भोगतना होगा। ये दो कार्य, ये दो चीज है। तो कैसे कर्मों का कैसा फल मिलता है यह भी हमें देखना चाहिए। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, कर्मणो अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणो अपि बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। तीन प्रकार के कर्म है, विकर्म, विकर्म, कर्म और अकर्म। विकर्म का अर्थ होता है भगवान के दिए हुए कानून के अनुसार हम कार्य नहीं करते हैं, भगवान के नियम के विरुद्ध अगर हम कार्य करते हैं तो उसे विकर्म कहा जाता है। भगवान ने कई सारे नियम दिए हैं जो भगवत गीता में है और अन्य शास्त्रों में है, उस नियम को तोड़कर हम जो कार्य करते हैं उसे विकर्म कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर चोरी करना, चोरी करना विकर्म है। किसी के वहां डाका डालना विकर्म है, किसी को मार डालना विकर्म है, और भी गलत गलत कार्य है, और ये गलत गलत कार्य करते हैं तो उसकी सजा, उनके फल भी गलत मिलते हैं, विपरीत मिलते हैं। तो भगवान के नियम से विरुद्ध जो कार्य है उसे विकर्म कहते हैं, और कर्म उसे कहा जाता है जो भगवान के नियमों को समझकर जो कार्य करते हैं, भगवान के नियमों का उल्लंघन किए बिना जो कार्य करते हैं उसे कर्म कहा जाता है। जैसे आपने देखा सत्वगुणी व्यक्ति ने दान दिया, जैसे किसी को दान देना, हॉस्पिटल बना लेना, किसी भिखारी को कुछ धन दे देना, किसी भिखारी को रोड, अंधे को रोड क्रॉस करवा देना, ये सब कर्म है। इस कर्म का फल हमें स्वर्ग में मिलता है, इससे अच्छी गति प्राप्त होती है, व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है और दूसरे जन्म में सुंदर बनता है या धनी बनता है, यह है कर्म करने का फल। विकर्म करने से हम अधोगति में जाते हैं, उसका फल गलत मिलता है, और कर्म करने से हमें स्वर्ग प्राप्त होता है या सुंदर जन्म मिलता है। यह है विकर्म और कर्म का फल। और विकर्म को हमारी भाषा में हम बुरा कर्म कहते हैं और कर्म को हमारी भाषा में हम अच्छा कर्म कहते हैं, परंतु अगर बुद्धि से देखा जाए तो यह बुरा कर्म तो बुरा है ही, परंतु यह अच्छा कर्म भी बुरा है। क्योंकि अगर हम विकर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, भगवान के नियम को तोड़कर हम कुछ कार्य करते हैं तो हमें नरक में जाना होगा। और अगर कर्म करते हैं, किसी को दान करते हैं और पुण्य करते हैं तो उस पुण्य के द्वारा हमें स्वर्ग में भेजा जाएगा, और स्वर्ग में तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम, वह स्वर्ग इतना विशाल है, उस स्वर्ग में जीव की अवधि विशाल है, उस स्वर्ग में भोग भोगने की वस्तु भी विशाल है, और विशाल आनंद उस स्वर्ग में है, परंतु दुख की बात है क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, जब उस पुण्य का अकाउंट समाप्त हो जाता है तब उस स्वर्ग से उस व्यक्ति को वापस इस पृथ्वी लोक में भेजा जाता है। वास्तव में हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है इस पृथ्वी पर, इस भौतिक जगत में रहना। विकर्म करके तो हम नीचे के लोकों में जाते हैं, परंतु कर्म करके भी हम स्वर्ग में जाकर फिर वापस यहीं पर आ जाते हैं, और वापस यहीं पर आकर हम पुण्य करेंगे पाप करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए कर्म करना और विकर्म करना ये दोनों बुरी चीज है। कुछ लोग यह जानते हैं तो यह जानते तो कहते हैं हम कर्म भी नहीं करेंगे और हम विकर्म भी नहीं करेंगे, गलत कार्य भी नहीं करेंगे और किसी का भला भी नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। परंतु गीता में भगवान कहते हैं कि व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, क्षण एक क्षण भर भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। नहीं कश्चित क्षण अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कर्म के बिना एक क्षण भी व्यक्ति नहीं रह सकता, इसलिए कर्म करना निश्चित रूप से आवश्यक है। तो प्रश्न यह उठता है कि अच्छा कर्म भी गलत चीज है और विकर्म पाप करना भी गलत है, तो हमें करना क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अकर्म करना चाहिए, और अकर्म का अर्थ होता है मेरी सेवा के अर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए जो कार्य करते हैं उसे अकर्म कहा जाता है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य है उसे अकर्म कहते हैं, और भगवान की प्रसन्नता के लिए कौन से कार्य हैं, किस प्रकार से कार्य करने चाहिए, ये हम कल श्रवण करेंगे। कल थोड़ा हम अकर्म के बारे में जानेंगे और बाद में सर्वोत्तम योग पद्धति के बारे में जानेंगे। हरे कृष्णा हरे 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 आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसी बन होते हुए भी इतनी गर्मी में आपने धैर्य से श्रवण किया, और हम प्रयास करेंगे कि कल ये सब ऐसे शुरू हो जाए और आपको तकलीफ ना हो। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
हेलो, मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि जो ये कर्म है या आप समझा रहे अकर्म भी कर्म, तो ये हमारे नसीब में लिखा के आते हैं या आगे हम सोचेंगे कि आज से हमें अच्छा ही कर्म करना है तो होता है?
बहुत ही सुंदर प्रश्न है, समझे आप लोग प्रश्न? हम जो कार्य कर रहे हैं ये कार्य पिछले जन्म के कर्म का परिणाम है। अगर पिछले जन्म का वे परिणाम नहीं है तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि आगे चलकर अच्छे कर्म हम अच्छा फल मिल सके। तो ये दोनों चीज है प्रभु जी, पिछले जन्म के या पिछले समय के कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके फल के रूप में ये कार्य हो रहे हैं। परंतु व्यक्ति को सदैव मन में यह रखना चाहिए कि हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि हम उस कार्य का आगे आने वाला फल जो है वह अच्छा हो। गीता में भगवान ने कहा है, इसे समझना बहुत मुश्किल है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वे अगले कर्म का फल है या कोई नया कार्य कर रहे हैं, ये हम नहीं जान सकते। इसलिए गहना कर्मणो गति, कर्म की गति को हम नहीं जान सकते। परंतु सदैव व्यक्ति को 24 घंटा यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमें बुद्धि के साथ अच्छे कर्म करने चाहिए, फिर चाहे वह फल हो चाहे वह हम नया कर्म बना रहे हो। ठीक, इसीलिए हमने कहा माता जी का प्रश्न है, एक सत्वगुणी व्यक्ति होता है, जैसे आपने देखा सत्वगुणी व्यक्ति ने एक भिखारी को दान दिया, उस भिक्षुक को दान देकर वो भिक्षुक ने उस दान का उस धन का गलत इस्तेमाल किया या शराब पी ली या सिगरेट पिया, तो उसका क्या फल मिलता है? इसलिए हमने आपको कहा कि बुरा कर्म करना ये तो बुरा है ही, लेकिन अच्छा कर्म करना ये भी बुरा है, किसी को दान देना यह भी बुरा है। अगर दान दिया है किसी भिखारी को और उसने गलत जगह पर वह धन लगा लिया तो हमें भी उसका फल भुगतना होगा, और अगर उसने अच्छी जगह पर धन लगाया है तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिलेगा, परंतु स्वर्ग से भी हमें पृथ्वी पर तो आना ही होगा। इसलिए हमें अकर्म करना चाहिए, यह भगवान कहते हैं। चाहे विकर्म करो या कर्म करो, कर्म के बंधन में व्यक्ति निश्चित रूप से फंसता है, तो कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए अकर्म करना चाहिए।